अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तम् येन चराचरम् तत्पदम् दर्शितम् येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। वसुदेवसुतं देवं कंसचाळुरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरातरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहम् न जाने। सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तु ते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे
बोलिए। सच्चिदानंद घन भगवान की। प्रेम से भगवान के सुंदर नाम का स्मरण करें।
श्रीमन नारायण 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 श्रीमन न भज मन नारायण 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 भज मन श्रीमन नारायण 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 श्रीमन यण भज मन नारायण 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 भज मन सत्य नारायण 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 सत्य यण सत्य नारायण 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 सत्य श्रीमन नारायण 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 श्रीमन भज मन नारायण 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 भज मन बद्रीनारायण नारायण नारायण बद्री नारायण बद्री नारायण 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 बद्री श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् यण भजमन् नारायण 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 भजमन् गुरुदेव नारायण 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 गुरुदेव न गुरुदेव नारायण 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 गुरुदेव श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् न भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन् न सब जग नारायण 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 सब जग यण सब जग नारायण 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 सब जग यण सब जग नारायण 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 सब जग ण श्रीमन् नारायण 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 श्रीमन् यण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् यण जप मन नारायण 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 जप मन नारायण रट मन नारायण 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 रट मन नारायण भज मन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बोली सच्चिदानंद घन भगवान की कृष्ण कन्हैया लाल की राजा रामचंद्र भगवान की उमापति महादेव की जगज्जननी अम्बे माता की सद्गुरुदेव भगवान अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक सर्व जगत नियंता परम सत्ताधारी घटघटवासी भक्तवत्सल परमात्मा परमेश्वर आत्मस्वरूप परमात्म स्वरूप भक्तवंद परम हर्ष उल्लास आनंद का विषय परम पावन दिव्य भूमि स्वामी श्री प्रेमपुरी आश्रम का सुंदर भवन मोक्षपुरी जिसको कहा जाता है, और हर वर्ष की भांति हमारा आपका पुनः पुनः 1 अप्रैल को मिलन हो रहा है। हर वर्ष इसी दिन हम लोग मिलते हैं और बहुत प्रसिद्ध दिन है, ऑल फूल्स डे है ना, महामूर्ख दिवस है। और आज तो बनने की भी जरूरत नहीं, टीम इंडिया ने आपको फूल्स बनाई दिया है, तो अब की बार हमारा साथ टीम इंडिया ने भी दिया। हर बार केवल अकेला रह जाता था मैं, तो टीम इंडिया ने भी साथ दे दिया आपको। बम्बई वाले जीत की आस में बेचारे रात भर जागते रहे हैं, लेकिन तो वास्तविकता में जब तक सत्य की प्राप्ति ना हो जाए तब तक ये इंसान मूर्ख या अज्ञानी, शास्त्र की भाषा में अज्ञानी कहा जाता है और साधारण भाषा में मूर्ख कह सकते हैं। तो जब तक अपने वास्तविक स्वरूप की प्राप्ति ना हो जाए और दृश्य जगत ही हमको सब कुछ दिखाई देता रहे और इसी दृश्य जगत को सत्य मानकर हम भटकते रहें, यही अज्ञान है, इसी का नाम मूर्खता है। तो साल में 1 अप्रैल एक दिन आता है सांसारिक भाषा में, लेकिन हम तो जन्म जन्मांतरों से 1 अप्रैल मना रहे हैं, ना जाने कितने जन्मों से भटक रहे हैं और अभी तक शांति की प्राप्ति नहीं है। तो पिछले 2 वर्षों से हम लोग श्रीमद् भागवत के बाल चरित्र को माध्यम बनाकर वेदांत का जो चरम है ना, भगवान नारायण ने, भगवान विष्णु ने जब चतुश्लोकी भागवत ब्रह्मा जी को सृष्टि के आरंभ में ज्ञान के रूप में दी, क्योंकि ब्रह्मा जी का मन अत्यधिक निर्मल था, प्रथम पुरुष थे सृष्टि के, इसलिए उनके हृदय में लेश मात्र भी अज्ञानता या अंधकार नहीं था, तपस्या का प्रभाव था 1000 दिव्य वर्षों के। परिणामतया भगवान को केवल 4 श्लोकों में ही संपूर्ण ज्ञान प्रदान करने की स्थिति प्राप्त हुई। जो ज्ञान हम वर्षों बरस सुन के भी समझ नहीं पाते हैं, ब्रह्मा जी को 4 श्लोकों में भगवान ने समझाया था। चतुश्लोकी भागवत, परम ब्रह्म क्या है, भगवान की माया क्या है, इन पंचभूतों का मिलना बिछड़ना क्या है, और इन 3 चीजों के द्वारा सृष्टि क्रम को समझाने के बाद भगवान ने जो अंत में 4वां श्लोक कहा, एतावदेव जिज्ञासं तत्व जिज्ञासुनात्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यस्यात् सर्वत्र सर्वदा, ये जो श्लोक है हमारे आपके लिए, जिसकी सिद्धि के लिए हम यहां नित्य प्रति सत्संग करते हैं। वास्तविकता में तो ये व्यवहारिक सत्संग है, चाहे आप जितना वेदांत पढ़ डालें, चाहे हम जितना भी वेदांत पढ़ें, ये सब केवल हमारे व्यवहार जगत को ठीक करने के लिए है। बाकी परमेश्वर की चर्चा हो नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि उसके लिए स्वयं शास्त्र कहते हैं अचिंतनीय है, अगम है, अगोचर है, इंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं किया जा सकता, बुद्धि के द्वारा उसका चिंतन नहीं किया जा सकता, वाणी के द्वारा उसको बताया नहीं जा सकता, कर्णों के द्वारा उसको सुना नहीं जा सकता, तो इसलिए उसकी व्याख्या संभव नहीं। और चूंकि केवल अनुभव गम्य है, इसलिए स्वयं की अनुभूति के द्वारा ही उसको जाना जा सकता। तो ये जो हम नित्य प्रति तरह तरह के ग्रंथों के माध्यम से चर्चा करते हैं, ये सब केवल हमारे व्यवहारिक जगत का सत्संग है, और इस व्यवहार के द्वारा हम अपने आप को ठीक कर लें, है ना? क्योंकि मनुष्य आखिरी तक ये समझ नहीं पाता, जो हमारा ये श्रीमद् भागवत के बाल लीला का 10वां स्कंध वेदांत के मंच से लेने का जो कारण है वो यही है कि बरसों बरस मनुष्य सत्संग करता रहता है और वेदांत का सत्संग करने के बाद अभेद होने की बजाय भेद बुद्धि हो जाता है ना। यदि आपसे मैं पूछूं कि परमेश्वर सगुण है या निर्गुण, आप लोगों का जवाब क्या है एक बार में बता दो हैं? क्या कहते हैं आप हैं? सगुण है कि निर्गुण है? भाई वेदांत दृष्टि से क्या है? यही तो गलती कर गए ना। वेदांत दृष्टि से ही तो सगुण साकार निर्गुण निराकार है। भाई वेदांत का मतलब क्या है? वेदांत का मतलब है हमको पर्दे के पीछे की कहानी समझ में आ गई, इसी का नाम तो वेदांत है। भाई जब तक पर्दे के आगे की कहानी आप सत्य मान रहे हो तब तक तो आप सगुण साकार निर्गुण निराकार के झमेले में फंसे हुए हैं। कभी कहते हो सगुण साकार, कभी कहते हो निर्गुण निराकार। लेकिन जब बात सब जिसको कहते हैं अपरोक्षानुभूति है ना, आप लोग वेदांत की भाषा में क्या बोलते हो, अपरोक्ष की जब अनुभूति हो जाती है, इसका मतलब पर्दा क्या हो गया? परोक्ष का मतलब पर्दा। शास्त्र की भाषा में पर्दे को क्या करते हैं? परोक्ष, पर्दे के पीछे। और अपरोक्ष का मतलब पर्दा क्या हो गया? अनावरण जिसको कहते हैं ना, आवरण का क्या हो गया? अनावरण हो गया। परोक्ष जो है अपरोक्ष हो गया। यानी जहां पर आपको दोनों चीजें समझ में आ गई कि सगुण साकार निर्गुण निराकार वास्तविकता में भिन्न नहीं बल्कि क्या है? अभिन्न है। इसमें वास्तविकता में कोई अंतर नहीं है। पिछले दो वर्षों से हम लोग भगवान की जो बाल चपल लीलाएं, भगवान की अद्भुत बाल चपल लीलाएं बोली जाती हैं, बाल भक्ति जो हमको समझना है, जो हम गलतियां करते हैं इस आध्यात्मिक जगत में, जब हम ज्यादा अपने आप को ज्ञानी मान लेते हैं तो हमने देखा है बहुत से लोग बोलने लगते हैं महाराज हम तो निर्गुण निराकार वाले हैं, या आपके सगुण साकार से हमारा कोई लेना देना, ऐसा बोलने लगते हैं लोग। स्पेशल ज्ञान हो जाता है, विशेष ज्ञान हो जाता है। बोले ना हम मूर्ति पूजा करना हमने छोड़ दिया है, मंदिर जाना छोड़ दिया, हम केवल क्या करते हैं निर्गुण निराकार चाहिए, सब व्यर्थ है, मंदिर वंदिर जाना सब बेकार की बात है। लेकिन वास्तविक सत्य ये है कि हमारे यहां ऋषियों ने, महर्षियों ने और भगवान ने अपनी लीलाओं में जो संसार में चल रहा है और संसार में जो व्यवहार चल रहा है उसके ऊपर ही अध्यात्म को आधार बनाकर लीला की, छोटी छोटी लीलाओं के माध्यम से भगवान ने, हम लोग शांति पाठ के मंत्रों में नित्य प्रति बोलते हैं, हैं? तमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, किसको बोलते हैं? नमस्ते वायो, बोलते हो कि नहीं बोलते? तो ऋषियों को प्रत्यक्ष ब्रह्म किसमें दिखाई दिया? वायु में। और अब इस समय स्थिति जानते हैं आप क्या है? इस समय स्थिति यह है कि जल के लिए, ये थर्ड वर्ल्ड वार यानी तीसरा विश्व युद्ध केवल होने ही जा रहा है जल के लिए, जरा विचार कीजिए। और भगवान ने आज से हजारों साल पहले, 5 से 6 हजार वर्ष पूर्व कालिया दह की लीला की थी, विषाक्त जल है, आपको सुनाया था पिछली बार, विषाक्त जल जिसको पी पी कर छोटे छोटे गायों के बच्चे और ब्रजवासी जो है मृत्यु को प्राप्त हो रहे थे, उसके लिए भगवान ने स्वयं उस कालिया दह में छलांग लगाकर उस जल को शुद्ध किया। क्या किया? हाँ, शुद्ध करके उन ब्रजवासियों को, महाराज वृंदावन निवासियों को शुद्ध जल की व्यवस्था करके दी। ये सगुण साकार उपासना है, क्योंकि जब तक आपका शरीर स्वस्थ नहीं होगा, आपका स्वास्थ्य जब तक नहीं ठीक है, तब तक आपके लिए अध्यात्म क्या है? कठिन है कि नहीं है? स्वास्थ्य ठीक है तो आप सुन भी सकते हो, बैठ भी सकते हो, चल भी सकते हो, लेकिन अगर स्वास्थ्य आपका क्या हो जाए, खराब हो जाए, तो आपका चलना फिरना, उठना बैठना, सुनना सुनाना सब क्या हो जाएगा, सब निरर्थक हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य यह है, जो हम लोगों ने ये बाल लीला का प्रकरण लिया है, इसीलिए लिया है कि वास्तविकता में जिस जीवन को हम जी रहे हैं, जो जीवन हमारा है, भगवान ने जो लीलाएं की हैं, कोई भी ऐसी लीला नहीं की है भगवान ने जिसको हम अलग से देख सकें, अपने जीवन से अलग हटाकर देख सकें, चाहे वो भगवान की माखन चोरी हो, चाहे वो भगवान का उखल में बंधना हो, जिस भी प्रकार से भगवान ने हमारे सामने अपने आप को प्रस्तुत किया है अवतार लेकर, उसका मुख्य कारण यही है कि केवल और केवल हमको इतना ही काम करना है कि तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध हो जाए। जिस दिन तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, उसी दिन तुम्हारे अंदर इतनी विशेषता आ जाएगी कि ज्ञान के लिए जैसे ब्रह्मा जी को केवल तीन श्लोक, चौथा श्लोक भी नहीं, क्योंकि चौथा श्लोक तो भगवान ने जिज्ञासु के लिए बोला है कि एतावदेव जिज्ञास्यम तत्व जिज्ञासुनात्मना, जो परमेश्वर को और तत्व को जानना चाहते हैं उनके लिए केवल इतना ही जानना श्रेयस्कर है, इतना ही जानना पर्याप्त है। यस्यात् सर्वत्र सर्वदा, वो परमेश्वर हर जगह है, हर समय है और सब जगह बराबर है, कहीं छोटा बड़ा नहीं है। जिसको आपने श्रुतियों के माध्यम से ही, श्रुति के माध्यम से श्रवण किया कि ईशावास्यम इदम सर्वम, और उसके बाद उन्होंने और सूक्ष्मता से कह दिया यत किंच, जो कुछ भी है, यत किंच जगत्याम जगत, जगत में यानी जो कुछ भी आपको नेत्रों से दिखाई दे रहा है, इन नेत्रों से दिखाई देने वाला जितना भी, जो जितना भी नक्षत्र मंडल तारा मंडल, जो कुछ भी आप नेत्रों से देख सकते हैं, जहां जहां तक भी आपकी दृष्टि देख सकती है, वो परमेश्वर के अलावा कोई दूसरी चीज नहीं है। यत्सात सर्वत्र सर्वदा, बस इस सिद्धि के लिए ही हमने श्रीमद् भागवत के बाल लीला का चयन किया। बाल लीला में भगवान ने सब कुछ प्रकट करके रखा है कि किस प्रकार से एक बुद्धिहीन से बुद्धिहीन व्यक्ति भी, जिसको पढ़ना भी ना आता हो, लिखना भी ना आता हो, वो भी ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी है। और इसकी साक्षात प्रमाण गोपिकाएं हैं कि नहीं, साक्षात प्रमाण गोपिकाएं हैं। और हमारी आगे आने वाली लीलाओं में भी भगवान ने इसी चीज का विवेचन किया। ये जो हम लोग सोचते हैं कि केवल पढ़ लेने से, पढ़ाई एक अलग चीज है, ये तो हर बुद्धि की अपनी सामर्थ्य है। भगवान ने तरह तरह की सृष्टि की है और सृष्टि में बुद्धिमान मनुष्य को बनाया, ऐसा हम मानते हैं, लेकिन दिखाई भी देता है, दिखाई नहीं देता हमारा। जब आप सृष्टि में जाएंगे तो जिन जानवरों को, जिन पशु पक्षियों कीटों को हम बुद्धिहीन समझते हैं, वास्तविकता में देखो उनको ना तो हॉस्पिटल की जरूरत पड़ती है, ना उनको किसी प्रकार के बैंक की जरूरत पड़ती है, ना उनको किसी प्रकार के गोदाम की जरूरत, गोडाउन बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और मनुष्य को ये सारी चीजें चाहिए कि नहीं चाहिए बताओ। हम जिनको बुद्धिहीन समझते हैं उन, वो सृष्टि में कब से कब तक है, कहीं पे देखा आपने कौवे को कभी देखा आपने, कागड़ा आपके दरवाजे पे रोज आके कांव कांव करता है, कभी देखा उस आपको उसने कि अपने घर वालों को कभी वो हॉस्पिटल लेके जा रहा हो, है देखा? देखो, हम कहते हैं हम बुद्धिमान हैं, ना उनको डॉक्टरों की जरूरत, ना उनको किसी गोडाउन की जरूरत, ना उनको जो है किसी प्रकार के विशेष व्यवस्था की जरूरत। और इंसान को, मनुष्य को जो इतना प्रबुद्ध बनाया गया महाराज, जो ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी माना गया, उसकी स्थिति यह है कि महाराज हर सुविधा संपन्न हो जाने के बाद भी उसके दुखों का अंत नहीं दिखाई देता, उसके बाद भी वो याचक बनकर भगवान के मंदिर में जाके क्या हो जाता है, खड़ा हो जाता है, भगवान के मंदिर में याचना करने लगता अपने दुखों की निवृत्ति के लिए। तो भगवान जो बाल लीला में समझाना चाहते हैं कि ये जो हम बुद्धिमान बनाए गए हैं, ये जो बुद्धि का हमको विशेष उपहार दिया गया है, इसका उपयोग एकमात्र यही है कि हम किसी भी प्रकार से अपने आप को समझ सकें कि वास्तविकता में हमारा स्वरूप है क्या। जिस चीज को ना समझकर हम एक बिल्कुल बुद्धिहीन की तरह याचक बनकर भगवान के सामने छोटी छोटी अपनी तकलीफों, छोटी छोटी परेशानियों को लेकर हम भगवान के समक्ष खड़े हो जाते हैं जाकर कि प्रभु हमारी जो है तकलीफ को दूर करो। और उसके बाद तो महाराज हैं, जब आदमी गिरने पे आता है फिर तो तांत्रिक भी क्या तरह तरह के फिर जो है लोग हैं जिनके समक्ष जाकर अपनी मन्नत, जिसको कहते हैं आप, जिसको इच्छाएं कहते हैं, जिसको कामनाएं कहते हैं, उनको पूरी करने का यत्न करता हुआ दिखाई देता। ये हमारी बुद्धिहीनता का परिचय है। क्यों? क्योंकि जब तक हम इस बात को नहीं समझते हैं, यत्चात सर्वत्र सर्वदा, ध्यान रखिएगा, ये चीज जिस दिन आपको समझ में आ गई वो हर जगह है, हर समय है, उस दिन आपको इस प्रकार से भटकने की आवश्यकता। तब तक आप भटक रहे हैं जब तक आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है ना। इसीलिए आपको सुनाया भी था पिछले वर्ष ब्रह्मा जी के मोह का प्रसंग आया था कि किस प्रकार से चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान देने के पश्चात भी चार श्लोकों में ज्ञान सृष्टि को प्रारंभ करवा दिया भगवान ने ब्रह्मा जी के द्वारा, लेकिन सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने ज्यों ज्यों रचना करनी प्रारंभ की भगवान की ईश्वर की कृपा से, हैं, त्यों त्यों ब्रह्मा जी के अंदर ये भाव दृढ़ होता गया, अहम कर्ता। इस सृष्टि का रचनाकार कौन है? ब्रह्मा जी को लगने लगा मैं हूं, जबकि भगवान ने समझाया था अहमेवासमेवाग्रे, सृष्टि से पूर्व भी मैं हूं, सृष्टि के मध्य में मैं हूं, सृष्टि के अंत में मैं हूं, मेरे अतिरिक्त ब्रह्मा जी कुछ भी नहीं है। इस बात को बिल्कुल समझ लो, ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किन जगत्याम जगत। अगर तुमको ये समझ में आ गया तो तुम कर्ता भाव में बिल्कुल भी स्थित नहीं होगे। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते, श्रीमद् भगवद गीता कहती कि नहीं? विमूढ़ आत्मा, बुद्धिहीन ऐसा मानता है कि मैं करता हूं, मैंने किया है इसलिए मुझे भोगों की प्राप्ति हो रही है और ये सुंदर भोगों को भोगने वाला मैं हूं। बोलो, ये भावना तुम्हारे अंदर दृढ़ है कि नहीं है? निकली? नहीं निकली। इतना सुनने के बाद भी ये भावना हमारे हृदय से निकलने का नाम नहीं ले रही है कि मैं करता हूं और मैं भोगता हूं। कर्ता अमिति मन्यते, अभी भी आज तक हमारे अंदर से ये भावना निकलने को तैयार नहीं, ये मैंने किया है, ये मैंने भोगा है, ये मेरे दुख हैं, ये मेरे सुख हैं। देखो अपने जीवन को पढ़ के, ये अज्ञान है। इस अज्ञान को मिटाने के लिए ही, क्योंकि जो हम सत्संग करते हैं, ये बड़ी विचित्र बात है, बिल्कुल सूक्ष्मता से अपने आप को पढ़ने की चेष्टा करें, ये जो मैं है, अहंकार विमूढ़ आत्मा वाला जो मैं है, ये आपको ज्ञान में भी महाराज छोड़ता नहीं है और आप अंततः अपने आप को मैंने इतना सुन लिया है, इतना सुनना बाकी है, मैं ज्ञानी हूं, मैं विवेकवान हूं, ये जो भयंकर मूढ़ भाव हमने स्थापित कर लिया ये और खतरनाक हो गया। मैंने सुन लिया, मुझे सुनना है, जो मैं चल रहा है, ये जो खतरनाक स्थिति है। जबकि सत्संग का कार्य क्या था? जैसे साबुन जो है कपड़े को, मैल को साफ कर देता है और साफ करके बिल्कुल उसको चमका देता है, उसी प्रकार से सत्संग का एकमात्र लक्ष्य ये था कि वो हमारे अंदर से पूर्णतया मैं मेरेपन को निकाल दे। और इसके लिए हमने आपको भगवान की एक बड़ी छोटी सी लीला सुनाई थी मिट्टी खाने वाली, शायद आपको याद हो, क्योंकि भगवान ने सबसे पहले गीता का ज्ञान माता यशोदा को दिया, अर्जुन को नहीं दिया। भगवान ने कब दिया? जब भगवान बोलना भी नहीं जानते थे, तब भगवान ने माता यशोदा को क्या दिया? ब्रह्म ज्ञान दिया, बिना बोले गीता का ज्ञान दिया। और उस समय, विस्तार से नहीं केवल संक्षेप में हम आपको पुराने विषयों की ओर ले जाना चाहते हैं, क्योंकि प्रथम दिन है और जो है थोड़ा याद कर लीजिए, क्योंकि भूलना तो हमारी क्या है, जन्मसिद्ध अधिकार है ना। आप बोल के जाओ और हम उसको भुलाएंगे, ये हमारा अधिकार है। तो इसलिए आपको याद दिलाते हुए कि हम जो सुन चुके हैं, आगे बढ़ने से पहले सुनिए क्या हमने सुना और किस लिए सुना। सबसे बड़ा तो जो हमारा आपसे विनम्र प्रार्थना है वो ये है कि मुख्य लक्ष्य ध्यान रखिए, यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा, बस इतनी सिद्धि के लिए ही ये जो बारह महीने आपको सत्संग सुबह से शाम तक श्री प्रेमपुरी आश्रम में सुनने को मिलते हैं, उसका एकमात्र लक्ष्य ही यही है कि वो हर जगह हर समय हमको अनुभव होने लगे, जिसको हम बार बार भूलकर इस मायामय संसार में मैं मेरा पना दिखाने लगते हैं। जिस समय माता यशोदा ने अनुभव किया, जब भगवान के मुख में माता यशोदा ने अपने आप को देखा, बोले सृष्टि देखी। पहले तो भगवान ने एक बार लीला की, दुग्धपान के समय संपूर्ण सृष्टि को दिखाया, जो सृष्टि विराट स्वरूप में ग्यारहवें अध्याय में भगवान ने श्रीमद भगवद गीता के अर्जुन को दिखाया। किसके लिए? बोले महाराज उसको देखने के लिए, अर्जुन तुम साधारण नेत्रों से नहीं दिखाई दूंगा, मैं विराट रूप में क्या दूंगा? दिव्यम ददामि ते चक्षु, उसके लिए तुमको दिव्य दृष्टि चाहिए। दिव्य दृष्टि का मतलब समझते हैं, श्री प्रेमपुरी आश्रम में आपको नित्य प्रति ये दिव्य दृष्टि प्रदान की जाती है, जिसको विवेक कहते हैं। क्या कहते हैं? कौन सा विवेक? अरे अब तो रट गया होगा, सत्या सत्य विवेक। ये सत्य है और ये तो क्या सत्य है? अरे परमेश्वर ही तो सत्य है। और जितना जो क्षणिक, ये जो क्षणभंगुर संसार दिखाई दे रहा है, ये असत्य है, क्योंकि जो स्थिर नहीं है वो क्या है? असत्य है। और प्रेम से एक बार जरा बता दो आप लोग कि इस क्षण भंगुर संसार में आपका शरीर भी तो आता है कि नहीं आता? तो ये क्या हुआ, सत्य हुआ या असत्य हुआ? बाकी सब तो असत्य लगता है, लेकिन ये बस ये है मुख्य समस्या, ये है, ये असत्य नहीं लगता। हम लोग सत्संग में आकर क्या करते हैं, सारी दुनिया को असत्य घोषित कर देते हैं। वक्ता ने, प्रवक्ता ने कहा कि सब संसार असत्य है, और हमने भी हाथ खड़े करके कह दिया कि हां जी बिल्कुल आपका कहना 16 आने क्या है, सही है। लेकिन इतना कहने के बाद भी जो हमने स्वीकार नहीं किया वो ये था कि हमारा शरीर भी तो इस क्षणभंगुर संसार में ही आता है कि नहीं आता, इसको हम भूल जाते हैं, और यही हमारे अविवेक का कारण है। नित्य प्रति हमको दिव्य दृष्टि इन शास्त्रों के माध्यम से, ग्रंथों के माध्यम से, किसी न किसी वक्ता प्रवक्ता के माध्यम से दी जाती है, लेकिन उस दिव्य दृष्टि को हम नकार देते हैं। अपने शरीर को नश्वर ना मानकर, अपने शरीर को अहंकार के कारण, जिस समय माता यशोदा ने मुख के अंदर संपूर्ण सृष्टि को देखा, सूर्य चंद्रमा आकाश पाताल नक्षत्र मंडल, बड़ी बड़ी अग्नियों के समूह, बड़े बड़े वन समुद्र सागर लहराते हुए देखे, लेकिन संग में माता यशोदा ने ब्रजभूमि को भी देखा और उस ब्रजभूमि में अपने आप को भी देखा, तब उनको लगा कि ये कैसी लीला है, एक छोटे से मुख में इतना सब कुछ समा गया और मैं तो बाहर खड़ी थी, मैं इस मुख के अंदर कैसे पहुंच गई, मैं तो एक हूं, लेकिन एक से मैं कितनी हो गई। ये है देखो सगुण साकार, ये सगुण साकारता का प्रभाव है। तो वेदांत कैसे समझ में आए, जो आप सोचते हैं ब्रह्म चर्चा वेदांत मान लेना एक अलग चीज है, लेकिन वास्तविकता में वेदांत को समझने के लिए आपको इन लीलाओं के माध्यम, बहुत साधारण सी लीला की भगवान ने, खाली मिट्टी खाई और यशोदा माता ने कहा मुंह खोल के दिखाओ और भगवान ने मुंह खोल के दिखाया, ये है देखो ये वेदांत है। और माता यशोदा को महाराज अपने स्वरूप का दर्शन कराया, उस समय माता यशोदा ने स्वीकार किया, वहां पर हाथ जोड़कर माता यशोदा ने जब अपने आप को भी उसके अंदर देखकर मुख के अंदर समझ नहीं पाई, तब उनको ये स्वीकार हुआ कि ये जो मैंने अभी तक अपने अंदर भ्रम पाल रखा था मैं मेरेपन का, कि मैं जो है यशोदा हूं, इस छोटे से लाला की माता हूं, नंद बाबा मेरे पति हैं, और मैं जो है इस ब्रज की रानी हूं, और ये सारी गोपिकाएं मेरे अधीन हैं, सारा ब्रजमंडल मेरे अधीन है, ऐसा जो अहंकार मैं मेरेपन का भरा हुआ था, मैं सर्वथा त्याग करके प्रभु की शरण ग्रहण करती हूं। और ऐसा कहकर माता यशोदा ने जिस समय महाराज भगवान श्री कृष्ण छोटे से कन्हैया को प्रणाम किया, यही तो भगवान चाहते थे कि जो मैं मेरापन है ये माता के अंदर से क्या हो जाए, निकल जाए। जब माता ने उस छोटे से चार वर्ष के कन्हैया को प्रणाम किया, तब भगवान ने अपनी लीला को जैसे अर्जुन के सामने से समेट लिया था, वैसे ही भगवान ने क्या किया, समेट लिया। ये अहंकार का नाश है। जब तक मैं अपने आप को पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, ये जो मैं घुसा हुआ ना, ये निकालना पड़ेगा महाराज जी। सत्संग का एकमात्र लक्ष्य है, और ये मैं किसी और चीज का नहीं है, किसका है, असत्य का मैं है कि नहीं है, देहाभिमान जिसको कहते हैं, या इस नश्वर शरीर का जो मैं हमने अपने ऊपर लादा हुआ है, ये मैं हूं और मैं इसको पढ़ा रहा हूं, मैं बुद्धिमान बन रहा हूं, मैं ज्ञानवान बन रहा हूं, ये जो दुनिया भर की उपाधियां हम अपने ऊपर लाते चले जाते हैं, इसका परिणाम ये होता है अहंकार छूटता नहीं बल्कि और ज्यादा प्रगाढ़ होता जाता है। इसलिए हमको बरसों बरस नित्य प्रति जिस प्रकार से भगवान ने अर्जुन को अपना विराट देखने के लिए दिव्य चक्षु प्रदान किए थे, उसी प्रकार से आपको नित्य प्रति प्रेमपुरी के वेदांत रास मंडल में नित्य प्रति महाराज आपको विवेक यानी दिव्य दृष्टि दी जाती है, लेकिन हम उस दिव्य दृष्टि को क्या कर देते हैं, फेंक देते हैं। इसका परिणाम ये होता है कि सब कुछ सुनने के बाद, सब कुछ समझने के बाद, ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आया, समझ भी आ गया, सुन भी लिया, लेकिन जो चीज मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। क्यों नहीं, उसका पता कैसे चलेगा महाराज की जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला? उसका पता तब चलेगा जब आप शरीर की हर स्थिति से ऊपर उठ जाओगे, जब आपके ऊपर बीमारियों का प्रभाव नहीं पड़ेगा, जब आपके ऊपर काल की घटित होने वाली घटनाओं का प्रभाव नहीं पड़ेगा, जब आप सर्वथा भयमुक्त होकर अपनी अखंड सत्ता का दर्शन करोगे, तब आपको ये अनुभव होगा कि मुझे दिव्य दृष्टि की क्या हो गई, प्राप्ति हो गई। क्योंकि जब तक ये सारी अनुभूतियां हैं, जब तक आपके अंदर से भय आवाज लगा रहा है, हाय मैं मर जाऊंगा, क्योंकि सत्संग हो ही इसीलिए रहा है मृत्यु भय का नाश करने के लिए। अरे भाई, श्रीमद् भागवत शास्त्र हर वर्ष मुख्य जो आयोजन होता है श्री प्रेमपुरी आश्रम ट्रस्ट का, श्रीमद् भागवत सप्ताह पारायण जो ज्ञान यज्ञ होता है, हर वर्ष आप लोग श्रवण करते हैं, और उसका मुख्य लक्ष्य क्या है भाई? सीधा सा एक लक्ष्य है कि राजा परीक्षित के प्रारब्ध को नहीं काटा गया, बल्कि राजा परीक्षित को मृत्यु भय से सुखदेव जी ने मुक्त किया। स्वयं सुखदेव जी कहते हैं कि राजा परीक्षित, कुछ क्षणों के बाद तुम्हारी शारीरिक जो मृत्यु है, जो तुम्हारी मृत्यु है, वो काल रूप तक्षक आएगा और अपनी लपलपाती हुई जिह्वा से जहर उगलता हुआ तुमको डसेगा, ऐसा नहीं कि सुखदेव जी ने कहा कि मेरी कृपा तुम्हारे ऊपर हो गई और ये हजारों ऋषि जो यहां आए इनकी कृपा तुम्हारे ऊपर हो गई इसलिए तुम्हारे पास नाग नहीं आएगा, ऐसा वहां कुछ नहीं हुआ। वहां था, वहां तो जो होना था वही हुआ महाराज। जो श्राप लगा था वो श्राप ज्यों का त्यों वहां घटित हुआ, लेकिन जो असली काम हुआ जो यहां होता है रोज श्री प्रेमपुरी आश्रम में, एकमात्र लक्ष्य है मृत्यु भय से मुक्ति। जिब्बा से लपलपाता हुआ तुमको जहर उगलता हुआ महाराज तुम्हारे समक्ष आएगा, लेकिन तुमको कदाचित भी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। राजा परीक्षित कहते हैं बिल्कुल आपका कहना सर्वथा सत्य है, क्योंकि अब मैं परमात्मा के रस में डूब कर ये अनुभव कर रहा हूं कि मैं कभी मृत्यु को प्राप्त होने वाला नहीं हूं। क्या लगता है आप लोगों को, लगता है ऐसा? मृत्यु भय ज्यों का त्यों खड़ा हुआ है और सत्संग सुनते सुनते क्या हो गए, अरे बूढ़े हो गए कि नहीं हो गए? मृत्यु भय ज्यों का त्यों है महाराज। राजा परीक्षित को एक ही बार में महाराज ये बात समझ में आ गई। राजा परीक्षित कहते हैं कि एक नहीं हजार तक्षक मुझे काटे मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि मरने जीने वाला ये शरीर है, पांच भौतिक शरीर है जो ना जाने कितनी बार इस संसार में तरह तरह के रूप लेकर पैदा हुआ और ना जाने कितनी बार विघटित होकर मिट्टी में मिल गया, पुनः फिर मैं किसी न किसी रूप को प्राप्त हुआ, लेकिन वास्तविक सत्य ये था मामैवांसो जीवलोके जीवभूत सनातना, मैं उस अविनाशी परमेश्वर का अंश हूं इसलिए मैं कभी मरने जीने वाला नहीं हूं। इस मृत्यु भय को भगवान ने, सुखदेव जी ने महाराज राजा परीक्षित के अंदर से निकाल दिया, और यही मृत्यु भय यशोदा जी के अंदर से महाराज भगवान श्री कृष्ण ने जब स्वयं चार वर्ष के थे तब निकाल दिया, लेकिन हम महाराज आज तक आपका मृत्यु भय निकाल पाए? देखो नित्य प्रति महाराज केवल एक ही चर्चा है कि तुम अपने स्वरूप को देखो, तो जब हम उस स्वरूप की ओर निहारते हैं तो वहां पर महाराज सब कुछ मैं ही दिखाई देता हूं। सागर मैं हूं, नक्षत्र मंडल मैं हूं, सूर्य मैं हूं, चंद्रमा मैं हूं, हैं ये जो पहाड़ हैं, दुनिया भर की श्रृंखलाएं पहाड़ों की खड़ी, ये सब मैं ही तो हूं, मेरे अतिरिक्त यहां कोई दूसरा है ही नहीं, मेरी ही सत्ता है। लेकिन इस सत्ता की आपको अनुभूति नहीं हो रही, इसलिए आप अपने आप को मरने जीने वाला मान रहे हैं, और ये जो मरने जीने वाला है ये तो महाराज बिंदु मात्र है, इसका तो कोई अस्तित्व भी। अरे भाई आप अपने, अगर मैं इस हाल को आपको फ्री में गिफ्ट कर दूं और कहूं कि महाराज अपने हर जन्म का एक चित्र यहां पर लगा दो, तो ये हाल बड़ा पड़ेगा या छोटा पड़ेगा? कम से कम 84 लाख चित्र तो बनेंगे कि नहीं बनेंगे? बनेंगे कि नहीं? 84 लाख चित्र अगर आपके हर योनि के यहां टांग दिए जाएं, तो एक आदमी के चित्रों से ही ये पूरा हाल क्या हो जाएगा, भर जाएगा हमारा। अब मैं अगर आपसे कहूं कि इस चित्रों में से एक में अंगुली लगाकर ये कहो कि ये मैं हूं, क्यों भाई? गाय घोड़ा गधा कीट मकौड़ा मतंगा मछली क्या क्या बने, हम सब कुछ तो बन के आ गए, पहाड़ बने, पर्वत बने, वृक्ष बने, ना जाने क्या क्या बने महाराज, और सारे चित्र यहां पर लगा दिए जाएं और आपसे कहा जाए कि इसके एक के ऊपर हाथ रखकर ये कहो कि ये मैं हूं, असली वाला मैं हूं, ये वृक्ष मैं असली वाला ही, तुलसी का वृक्ष मैं बना था, देखो जरा अपने आप, ये विवेक दृष्टि दी जाती है। देखो यही तो दिया भगवान ने यशोदा माता को, देखो मेरे मुख के अंदर वहां महाराज आकाश क्या, अंतरिक्ष क्या, पाताल क्या, समुद्र क्या, द्वीप क्या, पर्वत क्या, सब कुछ दिखाई दे रहा, कुछ भी तो ऐसा नहीं जो शेष रह गया हो। स्वतः स्वयं यशोदा माता अपने आप को देखती हैं, उसी प्रकार से जब हम अपने को विवेक दृष्टि से देखना प्रारंभ करते हैं तो मेरे अपने स्वरूप के विस्तार के अलावा इस सृष्टि में कुछ भी तो नजर नहीं आता। ये मेरा ही तो विस्तार है, लेकिन इस विस्तार को मैं समझने की कोशिश नहीं कर पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि अहंकार दृढ़ीभूत है। मैं बुद्धि को समझाना चाहता हूं और बुद्धि की सीमा रेखा क्या है? जैसे कोई व्यक्ति, आज 1 अप्रैल है ना, और 1 अप्रैल के दिन जिस किसी प्रकार किसी मूर्ख कोई आदमी खड़ा हो समुद्र के किनारे और उसके हाथ में एक ऐसी बोतल हो और उससे पूछो महाराज क्या कर रहे हो, वो ये कहे कि मैं सारा सागर इस बोतल में भर के ले जाऊंगा, तो इतना कहते ही आपको क्या आ जाएगी, क्या आ जाएगी? हंसी आ जाएगी। और हंसी क्यों आएगी? क्योंकि वो व्यक्ति आपको क्या लग रहा है, हैं? क्या लग रहा है? अरे मूर्ख लग रहा है कि नहीं लग रहा है? मूर्ख लग रहा है। लेकिन क्या हमने कभी अपनी मूर्खता की ओर ध्यान दिया? हम उस अनंत ब्रह्मांड को, जो अनंत ब्रह्मांड नायक या परम ब्रह्म है या परमेश्वर है, उसको एक छोटी सी बुद्धि के इस पात्र में क्या कर देना चाहते हैं, भर लेना चाहते हैं। इसलिए आज तक हमको विवेक की प्राप्ति नहीं हुई। मृत्यु भय ज्यों का त्यों बना हुआ है, संपत्ति के नाश का भय ज्यों का त्यों बना हुआ है, और असली संपत्ति हमारे हाथ से रोज जा रही है, उसका एक दिन भी हमारे पास भय नहीं है कि अगला जन्म पता नहीं मनुष्य का मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसका भय नहीं है। लेकिन जो नश्वर पदार्थ हैं, जो पैदा होते समय, जन्म के समय आपके पास कुछ भी नहीं था महाराज, लेकिन मिल गया, वो मेरा हो गया, अब वो छूट ना जाए। अरे तुम्हारे चाहने से क्या बचा रहेगा, हैं? या उसको पकड़ सकते हो? कुछ भी तो नहीं कर सकते महाराज। फिर क्यों परेशान हो? इसलिए परेशान है क्योंकि महाराज हम बुद्धि की सीमा से बाहर निकलना नहीं चाहते और बुद्धि के द्वारा उसको आप ग्रहण नहीं कर सकते। केवल अपने अंतःकरण को शुद्ध कर सकते, इतना मात्र प्रयोजन है इस सत्संग का, उसके बाद काम तुम्हारा है। भाई एक साधारण सा व्यापारी पिता क्या कहता है अपने बेटे से? यही तो कहता है कि बेटा देखो भाई, ये मेरे पास पूंजी है, मैं तुमको पूंजी दे सकता हूं, लेकिन बिजनेस करना, व्यापार करना ये तुम्हारा कार्य है, उस पूंजी को बढ़ाना, उस धन को बढ़ाना ये तुम्हारा कार्य है कि तुम्हारी बुद्धि कितना कार्य करती। उसी प्रकार से शास्त्र आपको केवल अंतःकरण शुद्ध करने का तरीका बता सकते हैं। जितना ज्यादा अंतःकरण आपका शुद्ध होता जाएगा, उतनी ही जल्दी, यानी ब्रह्मा जी की तरह, जैसे ब्रह्मा जी को 3 श्लोकों में बात समझ में आ गई, उसी प्रकार से आपको भी सारी कहानी 3 श्लोकों में समझ में आ जाएगी। और हमेशा के लिए ये भय आपके शरीर से क्या हो जाएंगे, उस समय आप अपने आप को सर्वथा जीवन मुक्त अनुभव करोगे। जीवन में रहते हुए मुक्ति का आनंद जिसको कहते हैं, यानी लेश मात्र भी आसक्ति नहीं। ये जो आसक्ति रहित अवस्था है, लेश मात्र भी जहां पर आसक्ति नहीं है, उसी का नाम ब्रह्म ज्ञान है, उसी का नाम आत्मज्ञान, यानी अपना स्वयं का ज्ञान, मेरा अपना क्या है, मैं क्या हूं, ये जो ज्ञान की अनुभूति है, ये जिस दिन आपको होगी, उसका मुख्य लक्ष्य यही है कि महाराज आपके अंदर से आसक्ति समाप्त हो जाएगी, जीने मरने का भ्रम समाप्त हो जाएगा, सुख दुख का भ्रम समाप्त हो जाएगा कि मैं दुख भोग रहा हूं, मैं सुख भोग रहा हूं। वास्तविकता में ना हम सुख के भोगता हैं और ना दुख के भोगता हैं, हम तो सदा निरंतर एक रस आत्म तत्व शांत हैं। क्यों भाई? ये हमारी आपकी विवेक दृष्टि प्राप्त होने के बाद क्या होनी चाहिए? अनुभूति होनी चाहिए हमारा। तो जो हमारा प्रयोजन है, साधारण सी दिखाई देने वाली बाल चपल लीलाएं, वेदांत वाले से कहो आओ तुमको भगवान की बाल लीलाएं सुनाएं, बोले क्या है, आप भी कहां लेके बैठ गए हैं? अरे कुछ महाराज बड़ा बढ़िया सा कोई उपनिषद सुनाओ, है ना, ऐसा बोलते हैं लोग। अभी चुटकी बजाने आई नहीं और बात हो रही है ताली बजाने की। जरा सोचो, छोटी छोटी सी साधारण सी लीलाएं, और उन साधारण सी लीलाओं में महाराज वेदांत के सूत्रों का समावेश, और बिल्कुल साधारण रीति से अपने आप को पढ़ने का जो तरीका भगवान ने हमको दिया है, जो कला दी है इन लीलाओं के माध्यम से। और केवल बाल लीलाएं कंस वध तक, क्योंकि कंस का जो वध है वही असली मुख्य कार्य है भगवान की बाल लीला का, अंत वहीं पर अंत हो जाता भगवान की बाल लीला का कंस वध में, और वही असली चीज है। क्योंकि उसके पहले जिस समय अंतःकरण की शुद्धि की, एक एक जो पिशाच, एक एक मायावी पिशाच है, उसका पूरा विस्तार से हमने आपको जो है चर्चा हम लोगों ने की, चिंतन किया है पिछले दो वर्षों में, इस वर्ष भी करेंगे। हमारे गिरीश भाई पीछा नहीं छोड़ते, मेरा तो बोलने का मन करता नहीं, लेकिन जो है कल भी हम यही पूछ रहे थे, बोले 1 अप्रैल को आते हैं, मैं यही सोचता हूं या तो मैं पागल हूं या दो में से एक तो है ही है। क्यों भाई, आपको क्या लगता है, मैं पागल हूं कि आप हैं? हाँ, बोले यहां तो अपने आप को ही कहना पड़ेगा, क्या करें, मजबूरी है, नहीं लगते तो आप ही हो। क्यों भाई? तो हर वर्ष आपका सिर खाने आते हैं। मुख्य जो लक्ष्य है, ये जो साधारण, कुछ भी साधारण नहीं है, कुछ भी साधारण नहीं है। जितना जो है, एक बार मैं टीवी में एक प्रोग्राम देख रहा था, छोटे छोटे बच्चे गाना गाने के लिए जाते हैं प्रोग्राम में, तो वो जो आर्टिस्ट था जो पास कर रहा था बच्चों को, तो उसके सामने किसी ने गाना गाया, तो उस जब जो आर्टिस्ट है वो तो जानता क्या गलती कर रहा है, तो उसने जब गलती बताई तो उसको अजीब सा लगा, वो सोच रहा था मैं तो बहुत बढ़िया गा रहा हूं, लेकिन जब गलती सामने आई तो उसने सोचा कि मैंने साधारण सा गाना गाया। उसने कहा कुछ भी साधारण नहीं होता, हमने तो आपको सुंदरकांड सुनाया था, और सुंदरकांड में खाली एक चीज आप समझने की कोशिश कीजिए, जिस समय हनुमान जी को विश्राम देने के लिए मैनाक पर्वत जो है निकल के आया बाहर, हनुमान ते परसा करपुनि कीन प्रणाम, राम काज कीने बिन मोहि कहां विश्राम। जब ऐसी चैतन्यता परमेश्वर के प्रति आपकी आ जाए, राम काज कीने बिनु मोहि कहां, जब ऐसी अवस्था आ जाए महाराज, आपके अंदर का आलस्य समाप्त हो जाए, जब आपके अंदर का प्रमाद समाप्त हो जाए, आपके अंदर चैतन्यता के प्रभाव दिखाई देने लगे, अपने आप को हर समय आप आनंद के सागर में अनुभव करने लगे, तब महाराज आपको वास्तविकता में पता चलेगा कि अध्यात्म क्या होता है और ये मनुष्य शरीर क्या होता है। उसके पहले तो केवल समय पास है, समय पास नहीं है महाराज, ये वास्तविकता में अपने आप के स्वरूप को जानने की जो इन ऋषियों ने महर्षियों ने हमको आपको ये प्रसाद रूप दिया है, कुछ भी साधारण नहीं है। जरा सा एक सूत्र आपको वहां तक ले जाने के लिए पर्याप्त है, लेकिन समस्या ये है पकड़ना पड़ेगा उसको। लेकिन जहां आलस प्रमाद हुआ, जहां आपने उसको जो है मनोरंजन का साधन बनाया, जहां आपने उसको मन बहलावे का साधन बनाया, उसी समय आपकी गाड़ी जो है पटरी से उतर जाएगी। तो कल चर्चा करेंगे, समय समाप्त तो हो गया। सायंकाल भी हमारे गिरीश भाई ने जो है रखा है कार्यक्रम गीता चिंतन माला में, 6:30 से 7:30 बजे तक रामचरितमानस, और रामचरितमानस का प्रारंभ जो हमने विषय रखा है, रामचरितमानस का प्रारंभ जो तुलसीदास जी ने किया है अद्भुत, और कल्पना आप नहीं कर सकते हैं कि हमारे संत सनातन धर्म है क्या। केवल वंदना से ही हम ये समझने की कोशिश करेंगे। 1 तारीख से 14 तारीख तक शाम को तुलसीदास जी की केवल वंदना आप देखिए और सनातन धर्म को समझिए कि हमारे यहां क्या तरीका है। शाम को आइए और आपको आश्चर्य लगेगा। जो प्रारंभ है रामचरितमानस का, प्रारंभ वर्णानामार्थ संगानाम रसानाम छंद्रसाम अपि, इसका जो प्रारंभ है, किस प्रकार से तुलसीदास जी ने इसको प्रारंभ किया, इसके ऊपर चर्चा करेंगे 1 तारीख से 14 तारीख तक, 6 बजे से 7:30 बजे तक। उसका भी आनंद लीजिए।
तो हम तो पागल ही हैं, आपकी मर्जी है आगे तो। बोलिए सच्चिदानंद घन भगवान की। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।
हरि ओम। पूज्य महाराज के पुनीत श्री चरणों में वंदन। आज फागुनवद अष्टमी शुक्रवार, जो महाराज जी ने आज के दिन जो पधारते हैं, ईश्वर की एक बड़ी कृपा है कि जो पागल, अगर गल वो पंजाबी में लेवे तो गल यानी बातें, तो ये वन फोर्थ यानी पाओ, पा यानी पाओ, यहां पा अभी थोड़ी थोड़ी बातें महाराज जी ने हमारे सामने रखी है। मैं इतनी गुड़ में थी कि अपना पूरा हृदय झंझोल के रख देवे। प्रथम दिन में तो बहुत ही शांति से शुरुआत होती है। महाराज जी ने चुटकी की बात की, मगर वो एक चुटकी सिंदूर जो लगती है, लगाते हैं शादी के बाद, तो पूरा जीवन स्त्री का बदल जाता है। तो वो एक चुटकी महाराज जी की जो बजाने की बात की, तो वह अपने पूरे जीवन को बदलने की एक शुरुआत है आज से। और आज से प्रातः एवं सायं पूज्य महाराज जी यहां, महाराज जी को सुनना एक बहुत ही सरल, सहज और जो वेद की ऊंचाई है, वो छोटे छोटे ऐसे बाल लीला जैसे बातें जिसमें लगे कि क्या बातें होंगी बच्चों को, मगर उसको पूरी वेद की ऋचा के साथ हमारे हृदय में तक पहुंचाने के लिए इतना जबरदस्त उनका प्रवचन का, और सरल भी रहता है, कोई भी समझ सकता है। तो इसका कितना हम लाभ ले सके वह अपने पर निर्भर है। सायं जैसे पूज्य महाराज जी ने, बड़ी प्रसन्नता होती है कि संत खुद यह विवरण करे कि भाई अभी जो प्रवचन होने जा रहा है वह क्या है, क्योंकि हम लोग जो बोलते हैं उसमें तो अधूरापन रहता है। और महाराज जी ने तो यह भी बता दिया कि रामचरितमानस की वंदना का भी क्या महत्व है। जैसे हम लोग मंगलाचरण रोज करने की आदत है, मंगलाचरण का क्या महत्व है, और उसी से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। अब शांति पाठ होगा। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।